वैढवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 14 टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार्य तथा इतिहर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 100 पर आ गए। 100 अभी 2 महीने का गैप हुआ है ना, तो देखते हैं ये वेदक का अर्थ होता है उदय और उदीर्णा। जिसका उदय है उसका वेदक कहलाता है।
अरविंद
तो उसका उदय कहो विपाक कहो, तो जिसका उदय होता है उसी की उदीर्णा भी होती है। इसलिए यहाँ वेदक कहने से उदय और उदीर्णा की बात है, ये समझ लेना। हम थोड़ा डिवीजन करके आगे बढ़ेंगे शुरू से लेकर। यानी यहाँ जीव कितने प्रकृतियों को उदयावली में प्रवेश कराता है और उसमें क्षेत्र भव काल और पुद्गल को निमित्त करके ये उदय होता है, ये बात हमने पृष्ठ संख्या 3 पर देखी। उसमें ये भी देखी हमने कि जो प्रकृति उदीर्णा है उसमें उत्तर प्रकृति उदीर्णा है और मूल प्रकृति उदीर्णा है। उत्तर प्रकृति उदीर्णा भी 2 प्रकार की बताई है, एक एक उत्तर प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। उसके बाद हम 4 पृष्ठ पर देते हैं कि ये जो उदीर्णा होती है प्रकृति की उदीर्णा और उदय, तो कहते निरहेतुपने का निराकरण, यानी बिना हेतु के नहीं होती ये बताने के लिए उसका हेतु बताते हैं। हेतु यानी उसका निमित्त, तो उसके लिए कहते क्षेत्र है भव है काल है और पुद्गल की अवस्था है। यानी क्षेत्र भव काल और पुद्गलों का आश्रय कर स्थिति का विपाक होता है, यानी उदीर्णा होती है। स्थिति कम होकर जल्दी उदय में आती है और उदय क्षय होता है, यानी उदय होता है, उदय होकर वो निकल जाते हैं। यानी यहाँ स्थिति विपाक को उदीर्णा कहा, ये मैं पृष्ठ संख्या 4 पर अंतिम लाइन पढ़ रही थी। मैंने पहले बताया ना 3 और 4 पृष्ठ से बात कर रही, अब सुनना केवल। हाँ, यहाँ लिखा है कि स्थिति का विपाक है उसको उदीर्णा कहते हैं और उदय का क्षय है, लास्ट लाइन एकदम, उसको उदय क्षय जो है उसको उदय कहते हैं। क्षेत्र का हेतु का अर्थ है, क्षेत्र का अर्थ है नरक क्षेत्र है, वह कौन से प्रकृतियां उदय रूप है कौन सी उदीर्णा रूप है। हमने पहले भी देखा था अलग अलग गतियों में अलग अलग प्रकृतियों का उदय उदीर्णा वगैरह होती है, तो उसकी बात वहां बताएंगे। भव कहने से एक निर्यादि रूप भव ले लेना, काल कहने से या तो ये ऋतु लेना या बाल काल युवा काल वगैरह वो काल ले लेना, और पुद्गल कहने से जो कोई संयोग रूप पदार्थ है इष्ट अनिष्ट, उसमें उन्होंने गंध तांबुल वस्त्र वगैरह बताए थे, तो उसका आश्रय लेकर, उसका अवलंबन लेकर कर्मों का उदय और उदीर्णा रूप फल विपाक होता है। अपनी भाषा में कर्मों का उदय तो होता है उसकी स्थिति पूरी होने पर, परंतु उसके लिए भी बाह्य निमित्त हो जाता है। कर्म के निमित्त से तो बातें बनती ही बनती है, परंतु उसके उदय के लिए भी अन्य बाह्य निमित्त होता है। जिसको हमने पहले, आपको याद होगा, तो उसको कर्मों का नो कर्म कहा था,
एजेंट।
हाँ, एजेंट मेरी भाषा में। उसका बाह्य निमित्त जो है, कर्मों के उदय में जो बाह्य निमित्त पाए जाते हैं, उसी को यहाँ क्षेत्र, काल, भव और पुद्गलों का आश्रय लेकर बताया। जिसे हम देखते हैं ना, ज्ञानावरण का उदय होता है तीव्र, तो यहाँ बाहर का निमित्त होता है, तो किसी ने एनेस्थीसिया दिया या कोई मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया जो कहते हैं, तो ये बाह्य निमित्त की बात है। यानी इनका आश्रय लेकर, यानी इसके अवलंबन से, इनके निमित्त से तो कर्म का विपाक होता है, उदय होता है, ये वहां बात बताई थी। अब उदीर्णा के विषय में दूसरी गाथा बताते हैं, पेज नंबर 6 पर। उसमें कहते हैं स्थिति की उदीर्णा, अनुभाग की उदीर्णा और प्रदेश की उदीर्णा। पहले प्रकृति उदीर्णा की बात की थी उन्होंने, क्षेत्र, भव, काल वगैरह की अपेक्षा, क्योंकि स्थिति का भी उदय होता है, अनुभाग का भी। जैसे बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। सत्ता में भी 4 प्रकार से पड़े रहते हैं, और फिर उदय में आते में भी स्थिति का उदय, अनुभाग का उदय, प्रदेश का उदय, प्रकृति का उदय होता है। उदीर्णा में भी वे ही 4 बातें लगाना है। तीसरी गाथा में उनके जो भेद है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग वगैरह के, उदय उदीर्णा के, तो उसमें वो गुजगार, अल्पतर वगैरह लगाएंगे, उसकी बात वहाँ बताई है। यानी वहाँ वो अनुयोग द्वारों के पद निक्षेप, वृद्धि वगैरह, अनुयाग उसमें होते हैं, अनुयोग द्वार, ये बात बताई है। उसके पश्चात 8 नंबर के पृष्ठ पर तो कहते हैं, जो जीव स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों में से जिसे संक्रमित करता है, जिसे बांधता है और जिसे उदीरत करता है, उसके बारे में यहाँ वो बताएंगे। यानी एक बार बंधने के बाद उसमें तो स्थिति और अनुभाग का और प्रदेशों का संक्रमण भी होता है, और प्रकृति में तो होता ही होता है, वो प्रकृति संक्रमण कहते हैं। तो स्थिति का भी संक्रमण होता है, प्रदेशों का भी कम अधिक होना होता है, और फिर उसके अनुभाग का भी होता है, और फिर उसकी उदीर्णा भी होता है। तो किसमें ज़्यादा है, उदीर्णा ज़्यादा होती है कि संक्रमण ज़्यादा होता है, उसकी बात वहाँ बताएंगे। अब कहते ये जो गाथाएं बताइए, उनमें से 9 पृष्ठ पर बताते हैं, ये पहली गाथा उसमें प्रकृति की उदीर्णा और प्रकृति के उदय के बारे में वो प्रतिबद्ध है, और उसमें भी गाथा का जो परम प्रथम चरण है उसमें प्रकृति उदीर्णा की बात की है। अब इसमें एक होती है प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। स्थान में कितने एट ए टाइम में, एक समय में कितनी प्रकृतियाँ उदीर्ण रूप होती है, उसको स्थान कहेंगे। तो ये जो यहाँ प्रकृति स्थान उदीर्णा है, उसको स्थगित करके यहाँ एक एक प्रकृति उदीर्णा की बात की है। वो 2 प्रकार की है, एक एक मूल प्रकृति उदीर्णा और एक एक उत्तर प्रकृति उदीर्णा, और ये दोनों को ही 24-24 अनुयोग द्वारों में बताया। 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये 24 अनुयोग द्वार कौन कौन से है, तो समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत पर्यंत है। अब उसमें उदीर्णा की, मूल प्रकृति उदीर्णा की बात यहाँ शुरू करते हैं, तो वहाँ बताया कि उदीर्णा 4 प्रकार की है। ये 11 पृष्ठ पर नीचे से दूसरे पैराग्राफ में देख रही हूँ मैं। उसमें प्रकृति उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा और प्रदेश उदीर्णा, ये संबंध कहते वैसे है। प्रकृति उदीर्णा भी 2 प्रकार की है, मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति। अब मूल प्रकृति उदीर्णा के 17 अनुयोग द्वार बताए, उसमें भी समुत्कीर्तना से शुरू हो जाते हैं। तो मूल प्रकृति उदीर्णा का प्रकरण यहाँ से शुरू होता है, उसमें सबसे पहले समुत्कीर्तना बताई, तो समुद्र कीर्तना में ओग से, समुद्र कीर्तना में केवल है इतना बताते हैं, तो ओग से मोहनीय के उदीरक और अनुदीरक जीव है इतना बता दिया उन्होंने। ये अनुदीरक भी कैसे हो गए, मोह की उदीरना जब उदय भी नहीं रहेगा तो अनुदीरक होगी, तो मनुष्यों में ये पॉसिबल है, तो मनुष्य त्रिक में अनुदीरक भी है और उदीरक भी है। अब आदेश से नारकियों में मोहनीय के उदीरक जीव है, क्योंकि वहां अनुदीरक का सवाल नहीं है। इसी प्रकार जब ये सब नारकी सब किरियन मनुष्य पर्याप्त में समझना कि वहां तो उदीरक ही है। उसके बाद उन्होंने शादी यानी शादी उदीरना, शादी कब कहेंगे, उदीरना हो रही थी उत्तम श्रेणी में रुक गई थी, शुरू हो गई तो हम कहेंगे शादी। तो शादी अनादि ध्रुव और अध्रुव ये चार प्रकार के होती है। हाँ, चौदहवें के ग्यारहवें से सारे अनुदीरक है ना, उसके दसवें के अंत में उदीरना है। मोनी की बात चल रही, हाँ अन्य की बात नहीं है, जयदेवला में तो मोनी की बात चल रही, दसवें से एक अवली बाकी रही तो उदीरना रुक जाएगी, तब से उसको अनुदीरक कहेंगे। उनका प्रश्न था अन्य कर्मों के बारे में, अन्य कर्मों में जहाँ जिसका क्षय यानी दसवें तक उसका है और बाकी तेरहवें तक उदीरना की उचित तो तेरहवें में हो जाती सभी कर्मों में। ये बारह पुष्प आए थे, देखो ये विशेषार्थ मैं बताती हूँ कि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक मोहनी कर्म की उदीरना अनादि है, हर समय चल रही है, और समय दृष्टि जीव के उपशम श्रेणी से उतरने पर उसकी उदीरना शादी है। अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव कहेंगे और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव कहेंगे, यानी उसमें मोहनीय के उदीरक जीवों में सभी है, अनादि के भी है, शादी के भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी। और मार्गणाओं में जो कहते हैं नरक आदि चार गति की अपेक्षा अगर कहेंगे तो सबने तो शादी ही होगी और अध्रुव ही हो, शांत शादी और शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने स्वामी से पूछा था कि मोहनीय कर्म की उदीरणा कौन करता है, तो कहते समय दृष्टि भी करते और मिथ्या दृष्टि भी करते। उसके बाद काल अनुगम यानी हम देख रहे थे ना पहले समुद्र कीर्तना, फिर शादी अनादि ध्रुव अध्रुव, उसके बाद स्वामी को अब काल पूछ रहे थे, यानी काल उसमें तो तीन भंग बताना है, शादी शांत, शादी जब कहेंगे तो उसका अर्थ है उपशम श्रेणी से उतरा हुआ, तो निश्चित तो शांत होगा ही होगा, तो शादी और शांत, तो शांत होने के लिए मिनिमम अंतर मुर्गन मैक्सिमम अर्ध पुष्बल परावर्तन लगेगा, वो शादी शांत काल। और फिर अलग अलग मार्गणाओं में उसकी जो मार्गणा की जो उसकी जो काय स्थिति है उतना उसका काल कहेंगे हम, यानी मोहनीय में तो अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत, ऐसे तीन भंग हो गए। अब उसके बाद अंतर का अनुभव, अंतर में तो जघन्य अंतर एक समय हो गया, जैसे अनुदीरक हो गया और मरकर देव हो गया तो एक समय के पश्चात उदीरना चालू कर, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्तक, अंतर्मूर्तक तक तो अनुतिरक रहा, ग्यारहवें में रहा, फिर दसवें में आते ही उदीरना चालू हो जाए। वैसे आप अलग अलग मार्गणाओं में भी उसकी बात समझिए, यानी जहां वो मार्गणा में उपशम श्रेणी नहीं है तो वहां तो अंतर ही नहीं होगा, वो तो निरंतर है। फिर उसके पश्चात नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय बताए कि कदाचित सभी उदीरक है, कदाचित सभी उदीरक है, एक जीव अनुदीरक है, और नाना उदीरक है और नाना जीव अनुदीरक है, ये तीन भंग बताए। मनुष्य पर्याप्तों में तो मार्गणा ही शांत है, तो उसमें एक जीव होगा उदीरक या अनुदीरक होगा, उसकी अपेक्षा अनुदीरक की बात नहीं उदीरक ही होगा। उसके बाद उन्होंने भागा भाग बताया, मैंने अनंत भूभाग प्रमाण उदी रखे और अनंत वे भाग प्रमाण अनुदी रख, क्योंकि वो श्रेणी में अनुदीरक होते हैं। उसके बाद उसका परिमाण प्रमाण बताते हुए 15 पृष्ठ पर आए हैं कि उदीरक कितने हैं तो अनंत है और अनुदीरक कितने हैं तो संख्या है। तिर्यंचों में तो अनंत घटित होते हैं, बाकी मार्गणाओं में तो जो जिसकी संख्या होगी उसकी वहां बताएंगे। उसके पश्चात क्षेत्रानुगम बताया था उन्होंने, तो उदीरक जीव का कितना क्षेत्र है तो पूरा लोक है, और अनुदीरक का लोक का असंख्य स्वभाव। उसी प्रकार स्पर्शन में भी समझना, अब उसके बाद नाना जीवों की अपेक्षा काल, तो उसमें तो उदीरकों का तो सर्वदा काल है और अनुदीरकों का काल जघन्य एक समय, क्योंकि एक समय के लिए अनुदीरक होए अनेक जीव और फिर वो मरकर उदीरक हो गए तो एक समय के लिए घटित होगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख एक के पश्चात एक भी अगर करता रहे तो संख्या तीन जीव करेंगे अनुदीरक, तो दाना जीवन की अपेक्षा भी अंतर्मुख घटित होगा। उसके पश्चात नाना जीवन की अपेक्षा, यहाँ काल काल एक समय, उदीरकों का काल अनुदीरकों का काल देखा हमने, अब यह अनुदीरकों का अंतर देख रहे हैं। उदीरकों का तो अंतर होगा ही नहीं, अनुदीरकों का अंतर इसका अर्थ क्या है? उपशम श्रेणी चढ़ने में अंतर उसको देखा, नाना जीवन की अपेक्षा उपशम श्रेणी चढ़ने वालों में कितना अंतर पड़ता है याद है? वर्ष पृथक, तो उतना ही इसमें अंतर बताएंगे अनुदीरकों में। फिर भाव अनुगम में भाव तो सर्वत्र उदयित होता है, उसके पश्चात अल्पभूत तो बताया था कि अनुदीरक सबसे कम है, उदीरक अनंत गुण है, और जो जहां जो असंख्यात की संख्या होगी वहां असंख्यात गुणों की बात करेंगे मनुष्यों में, अन्यत्र तो अनुदीरक होते ही नहीं। उसके पश्चात अभी उत्तर प्रकृति उदीरणा की बात चलेगी, ये तो अभी तक हमने मूल प्रकृति उदीरणा की बात देखी। उत्तर प्रकृति की उदीरणा में एक एक प्रकृति और प्रकृति स्थान, यानी एट टाइम कितनी प्रकृतियों का उदय उदीरणा होती है, तो इसमें 24 संयोग द्वार है। पहले में पहले समुद्र कीर्तना है, यानी 28, अभी 28 के अलग अलग बताएंगे, 28 के अनुदीरक भी है उदीरक भी है। वहाँ आदेश में नारकियों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद के अनुदीरक जीव है, क्योंकि उसका वहाँ उदय नहीं है, जहाँ जिस प्रकृति का उदय नहीं होता उसकी उदीरणा भी नहीं है, इसलिए वहाँ अनुदीरक रहेंगे। परंतु नपुसक वेद के तो उदीरक ही है, उसके अनुदीरक नहीं होंगे वहाँ। वहाँ पंचेंद्रीय तिर्यंच पर्याप्तों में त्रिवेद के अनुदीरक का है, क्योंकि उसमें नपुसक वेद और पुरुष वेद वालों को ही पर्याप्त में, मनुष्य पर्याप्त या तिर्यंच पर्याप्त में दो ही वेद वालों के लिए तो नहीं छोड़ा। योनिनी में त्रिवेद के उदीरक है, पुरुष वेद और नपुसक वेद के अनुदीरक, ये बात मैं 18 पृष्ठ से देख रही हूँ। पंचेंद्रीय तिर्यंच जो अपर्याप्त है और मनुष्य अपर्याप्त है, वो किस किस के अनुदीरक हो गए? तो सम्यक प्रकृति के, सम्यक निश्चात्व के, स्त्री वेद के और पुरुष वेद, क्योंकि वहां कोई समय दृष्टि है नहीं है। और वे निश्चात्व के और नपुंसक वेद के उदीरक होते हैं, अनुदीरक नहीं होते। जिसका उदय है उसी की उदीरण, और 16 कषाय 6 9 कषाय के उदीरक भी है और अनुदीरक भी है, क्योंकि उसमें उदय के, हाँ जिसका उदय है उसी के उदीरक है, क्योंकि कभी क्रोध का होगा, कभी मान का, कभी माया का, तो उसमें तो उदीरक अनुदीरक दोनों, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रकृति की बात कर रही है, पहले मोहनी में जब देखा था तो अनादि से वो तो उड़ी रखी है दसवें के अंत तक, परंतु यहाँ एक एक अलग अलग प्रकृति की बात चल रही है। मनुष्य त्रिक में भी ऐसे पर्याप्त मनुष्यों में स्त्री वेद के अनुदीरक है और जो मनुष्य नहीं वो पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अनुदीरक। देवों में क्या कहेंगे? नपुंसक वेद के अनुदीरक। अब सनत कुमार से ऊपर के जो ना उग्र वेद तक स्त्री वेद के अनुदीरक कहेंगे, क्योंकि वो तो सारे नीचे उत्पन्न होते हैं ना स्त्रियां। और अनुदिष्ट से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के अनुदीरक होते हैं, क्योंकि उनका सारे समय दृष्टि है। मिथ्यात्व का, समय मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, उदय का सवाल ही नहीं है, इसलिए उसके अनुदीरक। और वहाँ सारे पुरुष ही है तो वहाँ स्त्रीवेद नपुंसक वेद के अनुदीरक हैं। अब ये समुत्कीर्तना हुई उत्तर प्रकृति उदीरण। अभी उसके बाद यहाँ तो सर्व और नो सर्व की बात है, तो इन्हें सभी प्रकृतियों की उदीरणा करने वाले जीव के उसको कहेंगे सर्व, और थोड़े कम की उदीरणा करेंगे तो कहेंगे नो सर्व। उसके बाद उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में, यानी सभी उत्कृष्ट प्रकृतियों की उदीरणा करने वाले जीव के उत्कृष्ट उदीरणा और कम की करने वाले के अनुत्कृष्ट होते हैं। उसके बाद जघन्य और अजघन्य की बात की थी, यानी जो एक ही प्रकृति की उदीरणा करने वाले उसके जघन्य उदीरणा है, और अधिक प्रकृति उनकी उदीरणा करने वाले अजघन्य उदीरणा है। उत्कृष्ट में कैसे देखे, मैक्सिमम की जो उदीरणा करते हैं, जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में अधिक से अधिक का उदय है तो अधिक की उदीरणा भी होगी। ऊपर के गुणस्थानों में दसवें में एक लोग ही है सूक्ष्म लोग, उसके एक ही की। हाँ उत्तर प्रकृति में सभी प्रकृति एट ए टाइम तो नहीं होगी, परंतु अलग अलग उसको ले। मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व गुणस्थानों में कितनी होती है उत्तर, उसमें भी ऐसे है ना, वो एक गुणस्थान के लिए हमने क्या देखा, भय जुगुप्सा दोनों का भी उदय होगा या एक का हो गया दोनों का भी नहीं होगा, तो उसमें भी कम ज़्यादा होगे ना। एक एक गुणस्थानों में भी उदय के कम अधिक होते हैं, जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में 10 का उदय होगा, किसी के 9 का होगा, किसी के 8 का होगा, किसी के 7 का भी होगा कि नहीं होगा, विष्णु योजना करके नीचे आया उसके होगा। यानी मिथ्या तो में 10, 9, 8 हमने देखे थे उदय हो, और अनंतानुबंधी बिना वाला जोड़ लेंगे तो उसमें तो 9, 8, 7 वाले भी होंगे, तो उसकी अपेक्षा सर्व और नौ सर्व घटित होते हैं ना। 10 की गणना तो सर्व हो जाएगी। अब उसमें भी आदेश से अलग बात करें तो नारकियों में मैक्सिमम कितने हो सकते और मिनिमम कितने हो सकते, नारकी के लिए मिनिमम कितनी होगी, तो नारकी के लिए मिनिमम तो चौथे गुणस्थान में, और उसमें भी हाँ विसर्जना करने वाला शाइक के भी लेते हैं, शाइक और औक्षमिक को भी ले सकते हैं। तो उसमें तो 6 की भी बात भी, 6 प्रकृतियों की होगी, 6 तो मिनिमम भी, और उससे ज़्यादा करेगी भाई की जो गुप्ता की अपेक्षा से कम ज़्यादा होगा, तो उसमें अगर उसकी अपेक्षा लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, और क्षायिक नहीं लेते तो और एक बढ़ेगी। तिरियंचों में मिनिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि 5वां गुणस्थान है, तो 5 होगी। कौन से 5 होगी, 5 किसके होगी, तिरियंचों में शाइक वाले को होगी, शाइक 5वां गुणस्थान नहीं होता तिरियंच, हाँ औक्ष में बरबर, आप पहले बरोबर का औपक्षणिक वाले को, यानी मिथ्यात्व या कोई संवेद सॉरी समय प्रकृति का उदय का सवाल नहीं है, औपक्षणिक है। अनंतानुबंधित प्रत्यक्षण दोनों नहीं है, यानी प्रत्यक्षण संज्वलन दो कषाय है, एक वेद है, एक वेद और एक युगल, वो पांच हो गए। तो भय जुगुप्सा बिना पांच हो जाएगी, और उसमें भय ऐड करो या जुगुप्सा ऐड करो तो छः होगी, दोनों ऐड करो तो सात होगी, और वैदिक समय दृष्टि होगी तो और आठ तक चली जाएगी। प्रत्येक गुणस्थान में हम ऐसे घटित कर सकते हैं, और मार्गणाओं में यानी अलग अलग गतियों में भी घटित कर सकते
हैं।
इसमें आप देख रहे हैं नारकी के कि तिर्यंश के, तिर्यंश में जो पांच बोली है तो उसमें तो शायद आपने औक्षमिक लेना है पांचवें गुणस्थान वाला। हाँ वेदक लेंगी तो समय प्रकृति को ऐड करना पड़ेगा तो छह हो जाएगी, इसलिए मिनिमम लेते हैं तो हाँ दो कषाय लेना है, एक वेद लेना है, एक युगल लेना है। अच्छा रखिएगा शुक्र
रखिएगा।
हाँ हो जाएगी तो उसको अजघन्य कहेंगे। जघन्य में हमने पांच लिया, और अजघन्य में तो छह भी हो गए, सात भी हो गए, आठ भी है, और अजघन्य में तीरेंचों में अजघन्य में तो मिथ्या तो नहीं चले आना, तो दस का भी हो जाएगा। वहाँ
गुणस्थान बदलेगा,
गुणस्थान बदलेगा।
अपने को तो पंचम गुणस्थान चला।
नहीं नहीं जगन्य के लिए हमने पंचम गुणस्थान को याद किया, यानी तीर्यंश इतना है अपना क्राइटेरिया था। तीर्यंशों में जगन्य कितना है तो पांच का, नारकियों में जगन्य कितना है छह का, चौथा गुणस्थान शायद क्या औपक्षणिक। और फिर मनुष्यों में जगन्य कितना है मंजू बहन, हाँ एक कवि दसवें में, हाँ बहुत अच्छा, या एक प्रकृति नौवे में भी होगी अंत में, वो बादर लोग होगी दसवें में, सूक्ष्म लोग होगी, मगर प्रकृति एक होगी। ये तो हो गई ना, ये समुद्र कीर्तन बताई। उसके बाद उन्होंने सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव बताए, एक एक अलग अलग प्रकृति के अलग अलग ले सकते यानी वहाँ तो मिथ्यात्व के उदीरक सादी है कि अनादि है, ध्रुव है कि अनादि है, तो एक तो सादी तो है ही है, अनादि तो है ही हर एक का। सादी कब होगा, जब समय दृष्टि होगा तो रुक जाएगा, फिर मिथ्या तो हो जाएगा तो फिर सादी हो जाएगी उसकी, और फिर ध्रुव में तो अभव्य को ध्रुव रूप से लेंगे, भव्य में अध्रुव रखेंगे। और अन्य सभी में सादी और अध्रुव लिया, क्योंकि भले ही सोलह कषाय है परंतु एट ए टाइम सोलह का सोलह उदय नहीं होता है, चार का होगा ना, क्रोध का होगा है, मान का या माया का, तो वो तो नौ कषाय में भी ऐसे है, प्रतिपक्ष वाले वहां भी है, तो किसी न किसी का उदय होगा, तो उसमें अनादि नहीं कहेंगे, सभी सादी हो जाएगी, यानी बाकी सभी सादी और अध्रुव ही कहलाएगा। अब गति की अपेक्षा लगाएंगे तो सभी सादी और अध्रुव हो जाएगी, क्योंकि गति ही सादी होती है। उसके बाद उन्होंने स्वामित्व बताया 21 पृष्ठ पर, तो पूछा था मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा किसके होती है, तो मिथ्यात्व की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि के होती है, सम्यक प्रकृति की उदीर्णा सम्यक दृष्टि के होती है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व की उदीरणा सम्यक मिथ्या दृष्टि की होती है, किसे भी यानी जहाँ जिसका उदय है उसकी बात है। अनंतानुबंधी की किसके होती है, पहले और दूसरे गुणस्थान वालों के दोनों के है। बारह कषाय और नौ नौ कषाय की मिथ्या दृष्टि की भी होती, सम्यक दृष्टि के भी होती। नानकियों में तो हमने देखा था स्त्रीवेद पुरुषवेद की उदीर्णा नहीं होती वगैरह, ये जो पहले हमने देखा था ना कौन से गति में कौन से प्रकृति की उदीर्णा नहीं होती, वो यहाँ भी लागू हो जाता है, वो तो हमने समुद्र कीर्तना में ही देखा था। उसके बाद 22 पृष्ठ पर आते काल अनुगम। मिथ्यात्व के उदीरकों में तीन बंग है, एक तो अनादि अनंत हो गया अभवियों के, अनादि का शांत हो जाएगा जब समय को प्राप्त हो जाएगा, और तीसरा है सादी शांत। जब काल देखते तो सादी शांत का काल बताएंगे जब अंदर उसके, तो सादी शांत का अर्थ क्या होता है? हाँ, समय विषय में से मिथ्यात्व हुआ तो मिथ्यात्व की उदीरना शुरू हो गई, तो कम से कम कितने काल में वो समय फिर उसकी अनुदीरक हो जाएगा, कितने अर्लीएस्ट वो समय को प्राप्त करेगा, एक अंतर्मोह, और लंबे से लंबे अर्ध पूज्य वो उसका काल कहेगा। जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट पुज्वल प्राप्त है सम्यक्व के उदीरता काल, सम्यक्व प्रकृति की उदीरा। जघन्य काल कितना होगा? अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल नहीं, दो छासठ नहीं, एक एक कहेंगे ना, एक आवलिकम छासठ सागर, एक आवलिकम छासठ सागर। और सम्यक मिथ्यात्व में तो अंतर्मूर्त होता है, और बाकी जो है सोलह कषाय वगैरह तो उसमें एक समय से लेकर अंतर्मूर्त, क्योंकि समय में वो तो चेंज हो सकता है। अरति शोक के उदीरक में एक बात है, हाथ से रति के उदीरक लंबे काल कौन सा रहेगा? उत्कृष्ट काल, छह माह, और अरति शोक का उत्कृष्ट 33 माह, वो मात्र सातवें नरक में ही घटित होता है, 33 साल है। त्रिवेद का उदीरक का जघन्य काल कैसे? एक समय उदीरक का, अनुदीरक का नहीं, हाँ, उतरते समय एक समय के लिए त्रिवेद की उदीरना की, और मरण से पुरुष हुआ तो देव में पुरुष होकर जन्मेगा, वहाँ पुरुष वेद की उदीरना शुरू हो जाए, और लंबे काल तक चलता रहे तो उसका स्त्री पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, पृथक तो सौ पल्य, पुरुष वेद में पृथक तो सौ सागर, और नपुसक वेद में अनंत काल। अब जो आदेश में अपने अपनी जो स्थिति है उसको ले लेना वहां पर। हास्यरति का जो उत्कृष्ट है तो उदीर्णा देवों में घटित होती है, छह मास देवों में ही घटित होती है, और जो 33 सागर बताया है वो सातवें नरक में ही होता है, अन्यत्र कितना होता है उत्कृष्ट का? पहले से छठे नरक तक एक अंतर्मूर्त ही होता है, सातवें नरक में ही वो लगातार चलेगा। देवों में भी हमने देखा था कहीं पर वो सहस्रार नहीं, सहस्रार में देखा था कि सनत कौन सहस्रार में देखा था, कहाँ देखा था वो? यानी उसी एक ही स्वर्ग में घटित होता है, अन्यत्र नहीं होता है, आयत की बात हुआ है। कहाँ पर आए? 25 में आए। शतर सहस्रार कल्पना सामान्य देवों के समान हम सतार सहस्त्र उसी की अपेक्षा 6 महीना का है, बाकी अन्यत्र है। तो यहाँ पर देखा हमने 23 पेज पर अंतर्मूर्त है एक, हाँ रति 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 या सॉरी हास्य रति या शोक रति, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना है उसकी बात हो सकता है ना वहाँ पर। फिर उन्होंने आदेश में बताया तिर्यंचों में मिथ्यात्व का और नपुंसक वेद का उदीरक का जगन्य काल, तो वहाँ की जगन्य आयु लेनी है शुल्लक भव प्रमाण, और उत्कृष्ट काल तिर्यंचों में असंख्या सिद्धल प्रवर्तन लेनी। सम्यक प्रकृति के बारे में तिर्यंचों में सम्यक प्रकृति का जगन्य काल, सम्यक की उदीर्णा का एक समय कुछ वेदक की अपेक्षा, और फिर उत्कृष्ट काल कुछ कम 3 पल वहां जाने के बाद सम्यक को प्राप्त किया, और सम्यक मिथ्यात्व का तो ओके समान एक अंतर्मूर्त होगा। 16 कषाय वगैरह वो भी जैसे ओघ में देखा था एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक, और स्त्रीवेद पुरुषवेद का उदीरक का जघन्य काल जघन्य आयु लेनी है, परंतु ये पर्याप्त जीव है पर्याप्त नाम करने वाले, तो जघन्य आयु अंतर्मूर्त हो। नपुंसक वेद में शूद्र भवे वो भी अंतर्मूर्त होती ही है, फिर भी उसको अलग नाम दे दिया है। फिर मनुष्यों में उन्होंने तिर्यंचों के समान ही भंग है, केवल सम्यक प्रकृति के उदयरक का जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया। वहां सम्यक प्रकृति का कैसा लिया था, कुत्ते वेद की अपेक्षा लिया था। यहाँ आगे बढ़ेंगे भी देवों में भी उन्होंने ऐसे बताया है, अपने अपने देवों का वहां काल देखना। अंतर में उन्होंने अभी अंतर देखेंगे 26 पेज पर, पहले हमने काल देखा था अब अंतर देखना है। तो मिथ्यात्व का अंतर कब होगा, जब समय दृष्टि रहेगा, तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2 छा सकता है। वहां काल में तो 1 ही छा सकता अगर लिया था हमने सम्यक प्रकृति के बारे में, सम्यक पर सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त वापस उसके आ गए, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल पर आ गए। अनंतानुबंधी में यह स्पेशलिटी है अंतर है। उदय में तो हमने एक समय से अंतर्मूर्त तक देखा था काल में, और यहाँ अंतर में हम देखते हैं तो उसकी जो विसंजना करेंगे तो अंतर बढ़ सकता है, तो कम से कम अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर 2 छा सकता है। जब तक वो समय दृष्टि हुआ विसंजना की और 2 छा सकता तक रहा हो, आठ कक्षाओं में जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है, क्योंकि 1 पूर्व कोटि तक संयम का कार्य अनुदीरक रहा संयम पालन तो उतना लेना है पूर्वकोटि का, उसका भी उन्होंने बताया है विशेषार्थों में। आगे बढ़ेंगे अभी हम, यानी वो सभी गतियों में उन्होंने गठित किया है। अभी सन्निकर्ष बताए उन्होंने, सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है, जब एक का उदीर्णा होगी तब अन्य कौन सी प्रकृतियों की होगी, तो उसमें मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला जीव संधि कर, हाँ उनको, हाँ तो वहाँ तो सन्निकट यानी निकटता हो गई, हाँ निकटता यानी सन्निकर्ष में तो एक के होते हुए दूसरे की क्या पोजीशन है वैसी होगी,
जैसे कि जो नारायण होता कृष्ण नारायण होता मतलब दोनों की सन्निकर्ष काल
हाँ
हाँ होते हैं
एक के होते हुए दूसरे होता ही है नियम से होता है बिल्कुल। अब यहाँ जो बता रहे हैं मिथ्यात्व की जो उदीर्णा कर रहा है, अभी सन्निकर्ष की बात करें कि जो मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला है वो 16 कषाय और 9 कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम सबका नहीं होता, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के साथ भी ऐसा ही समय। अनंतानुबंधी क्रोध की करने वाला और प्रत्याकरण प्रत्याकरण संगलन क्रोध की करेगा, अन्य भी नहीं करेगा, तो नियम से वहां नियम लगा। और जो अनंतानुबंधी की कर रहा है वो मिथ्यात्व और नौकषाण का कदाचित उदीरक है, क्योंकि दूसरे गुण या गुण स्थान वाला नहीं है, अनुदीरक है, पहले वाला उदीरक है। जो अप्रत्याख्यान क्रोध की उदीर्णा करने वाला 2 का नियम से है, 2 का नियम से यानी कौन सा, जो अप्रत्याख्यान करते हैं तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संगलन तीनों का तो होगा ही होगा, परंतु अप्रत्याख्यान का करने वाला अनंतानुबंधी का करेगा भी नहीं भी करेगा, पहले दूसरे गुण स्थान वाले करेगा और आगे वाले नहीं करेंगे। वैसे प्रत्याख्यान की जो कर रहा है वो संगलन के नियम से करेगा, नीचे वालों के करेगा भी नहीं करेगा, गुणस्थान के अस्ताब। अब जो क्रोध संगलन की उदीर्णा कर रहा है, अन्य 3 की तो नहीं कर रहा है, परंतु नीचे के गुणस्थानों में जो उदय रूप है वो तो करेगा भी या नहीं भी करेगा, इस तरह से उसमें लगा ले। मैंने हर एक में लगा लेना है, प्रत्येक प्रकृति पर, जैसे हास्य का कर रहा है रति का कर रहा है वो मिथ्यात्वादि का करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी नहीं भी करेगा, परंतु हास्य रति का करने वाला शोक रति का नहीं ही करेगा, बाकी के साथ वो तो कदाचित है कदाचित नहीं ऑप्शनल लग सकता है। वैसे उन्होंने 30 पृष्ठ पर हम देख रहे थे, 30 पृष्ठ पर आदेश में वो नीचे बता रहे हो जो मिथ्यात्व की उदीर्णा कर रहा है वो अनंतानुबंधी आदि की करेगा भी नहीं भी करेगा, परंतु नपुंसक वेद की निश्चित नियम रूप से करेगा क्योंकि वो नारकी है। सम्यक की उदीर्णा करने वाला 12 कषाय और 9 कषाय का कदाचित है, कदाचित इसलिए कहा कि 12 के एक साथ नहीं होता, इसलिए ऐसे हर एक पर उन्होंने घटित किया। ऐसे तीर्यंशों में भी हुआ है उनका, मनुष्य देवों में यही इसी प्रकार कौन कौन से वो उन्होंने घटित किया। उसके बाद 33 पेज पर नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय शुरू होता है। तो वहां तो कहते हैं मिथ्यात्व सम्यक्त्व 16 कषाय 9 कषाय के उदीरक भी नियम से है और अनुदीरक भी नियम से है। पहले तो मोह नहीं अकेला लगवाना था, यहाँ तो अलग अलग प्रकृति की बात कर रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व के कि वो सांतर मार्गण है, तो हो सकता है कि सांतर मार्गण है तो वो मार्गणा ही नहीं रहेगी, तो सभी अनुदीरक ही है, और जब वो उसमें कुछ जीव है तो कहेंगे बाकी तो अनुदीरक है और कुछ जीव उदीरक, तो फिर उसमें एक है या अधिक है उसकी बात करेंगे। और ये आदेश में यही हमने पहले देखे थे कि नरकों में पुरुष वे स्त्री वे की उदीरक नहीं होगी, किरिंचों में भी पर्याप्त में जो है वो स्त्री वेद के नहीं होते, और जो योनि है उनके पुरुष वेद नपुंसक वेद के नहीं होते। तो जहाँ जिसके पहले हमने जो समुच्चयार्थना में देखी थी वही बात यहाँ फिर रिपीट की। फिर भागा भाग की बात होती है 35 पेज पर, यानी मिथ्या तो नपुंसक के उदीरक जीव अनंत बहुभाग प्रमाण है और अनुदीरक जीव अनंत विभाग प्रमाण है। अनुदीरक में अन्य उभय वाले लेना, सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। जब सम्यक्त्व के उदीरक कहते हैं तो सम्यक्त्व की सत्ता वाले जीवों में उसके उदीरक लेना, नहीं तो अकेले सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाले कितने सभी जीवों की अपेक्षा तो अनंत विभाग हो जाएगी, परंतु यहाँ असंख्यात बहुभाग की है, अनुदीरक भी असंख्यात विभाग, सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक असंख्यात विभाग, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जीव कम हो गया वहाँ, अनुदीरक ज्यादा है, यानी जिनकी सत्ता है और जो अनुदीरक है। तो सत्ता है और अनुदीरक है ऐसे कौन कौन से जीव हैं? सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है और उसके अनुदीरक है ऐसे जीव कौन कौन से हैं? और सारी मिथ्या दृष्टि सारे जिनकी सत्ता जिनकी सत्ता है पर जो मिथ्या तो नहीं है, यानी दोनों दोनों ले सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। इस तरह से उसके भाग बताए कितने हैं क्या है। अब नपुंसक वेदी जीव अनंत है तो स्त्री वेद पुरुष वेद वाले उदीरक जीव तो अनंत वे भाग प्रमाण कहेंगे, नपुंसक वेद वाले अनंत बहुभाग प्रमाण कहेंगे। हास्यरति के बारे में उन्होंने ऐसा लिया, हास्यरति भय और विरूपता के उदीरक जीव संख्यात विभाग और अनुदीरक संख्यात बहुभाग, और अरति शोक के उदीरक संख्यात बहुभाग और अनुदीरक संख्यात विभाग प्रमाण, यानी अरति शोक वाले जीव ज्यादा है फिर आदेश से उन्होंने उसके बहुभाग अल्प भाग वगैरह वहाँ नारकियों में क्रोध अरति शोक के उदीरक संख्यात बहुभाग किया और अनुदीरक संख्या से भाग प्रमाण लिए। 12 कषाय और हास्यरति भजगुप्त है उसमें उल्टा लिया, उदीरक संख्या से भाग और अनुदीरक बहुभाग प्रमाण, ऐसे उन्होंने देवों में विघटित किया है। वहां लोभ वाले संख्या बहुभाग लिए, त्रिवेद के उदीरक संख्या बहुभाग लिए देवों में, स्त्रियों की संख्या ज्यादा नहीं अब परिमाण उन्होंने बताया है 38 पुष्प, मिथ्या तो 16 कषाय 7-9 कषाय के अनंत है, सम्यक सम्यक मिथ्या तो स्त्री पुरुष वेद के असंख्यात है, और फिर असंख्यात नपुंसक वेदी अनंत है इसके उदीर क्षेत्र में भी, फिर मिथ्या तो 16 कषाय वो कितना है तो पूरा लोग 7-9 कषाय, और जो सम्यक सम्यक मिथ्या तो स्त्री और पुरुष वेद के वो असंख्यात विभाग है। स्पर्शनानुगम में तो मानांति की अपेक्षा भी पूरा लोक हो सकेगा, फिर वहां विहार की भी बात करेंगे। वही बात उन्होंने हर एक मार्गणा पर भी गति की। उसके बाद काल की बात देखते हैं 41 पेज पर, वहां कहते 28 प्रकृतियों के उदीरक जीव का काल चल रहा है, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है तो हमेशा ही होगा, परंतु सम्यक मिथ्या तो के उदीरक जीवों का जघन्य काल अंतर्मूल उत्कृष्ट काल पल्ले के असम जाते, क्योंकि ये उस मार्गणा का काल है। तीसरे गुणस्थान है बाकी जो हमने समुत्कीर्तना में देखा था, नारकियों में कौन से अनुदीरक होते हैं, कौन से उदीरक होते हैं, तीरंशों में, वो बात यहाँ भी सूचित की है। उसके बाद अंतर 42 पेज पर अंतर में हमने पहले देखा था काल में कि सर्वदा काल है 28 का, अब यहाँ कहते अंतर नहीं है, वहाँ एक्सेप्शन लिया है समय मिथ्यात्व का, तो यहाँ कहेंगे समय मिथ्यात्व में जो है अंतर कहेंगे नाना जीवन के अपेक्षा। उदीरकों का अंतर, उदीरकों का अंतर का अर्थ क्या होता है, इस मार्गणा का अंतर। तो जगन्य में जगन्य अंतर एक समय होता है कि कोई भी जीव नहीं ऐसा एक समय के लिए हो सकता है, और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्या से भाग, तो उसके उदीरकों का भी अंतर कहेंगे। फिर भाव तो औदयिक और अल्पभूतों भी उन्होंने जैसे भागा भाग में बताया वैसे यहाँ अल्पभूतों को भी जाना, तो ये एक एक प्रकृति उदीरणा यहाँ तक बताई। अब प्रकृति स्थान उदीरणा की बात चलेगी, प्रकृति स्थान का एक ही काल में कितने एनी टाइम प्रकृतियों की उदीरणा होती है उसकी बात होगी आप, तो उसमें उन्होंने कहे कि प्रकृति समूह, प्रकृतियों का स्थान यानी प्रकृतियों का समूह, यानी एक काल में जितने प्रकृतियों की उदीरणा संभव है उन प्रकृतियों के समुदाय को यहाँ प्रकृति स्थान कहा। इसमें 17 नियोग द्वार है, पहले में पहले स्थान समुत्कीर्तना और प्रकृति समुत्कीर्तना, तो स्थान समुत्कीर्तना का ये अधिकार है, तो कहते हैं कि एक प्रकृति वाले जीव भी है, दो प्रकृतियों वाले भी है, अभी उतरता उल्टा उतरना 10 गुण स्थान से नीचे, फिर तीन प्रकृतियों के नहीं है, नहीं समझे, 10 गुण स्थान में एक का उदय है, 9 में उतरते समय सवेद भाग में 2 का शुरू होगा, अपगत वेद में 9 गुण स्थान में भी एक ही का उदय था, 9 के पहले भाग में 2 का उदय, 8 में एक युगल है ना वहां पर, हाँ तो एकदम 4 हो जाएगा, यानी 3 वाला स्थान नहीं है तो 4 वाला होगा, फिर 4 वाला है, 5 वाला, 6, 7, 8, 9, 10 वो सारे जीव है, क्योंकि पहले गुण स्थान से घटित करते जाओ तो हमने पहले भी 10, 9, 8, 7 वगैरह वो सब घटित हो जाए, यानी वो जीव है इतनी बात यहाँ बताई, उसका स्वामी कौन है उसकी बात यहाँ नहीं, वो समुत्कीर्तना है। आदेश की अपेक्षा मनुष्यों में तो सारे घटित हो गए और नारकियों में 4 ही गुण स्थान है, तो वहाँ जो घटित हो गए 10 से लेकर 14 में हमने मिनिमम 6 देखे थे, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएंगे, तीरंशों में हमने मिनिमम 5 देखे थे, 5 से लेकर 10 तक उनके भी स्थान होंगे। अब इन स्थानों में प्रकृतियों का निवेश, यहाँ तो स्थान ने केवल संख्या बताई कि एक वाला है, 2 वाले हैं, 4 वाले हैं, 10 तक है, तो वो स्थान कौन कौन है, वो प्रकृतियाँ कौन कौन सी है एक स्थान में उसको बताए, तो कहते हैं एक प्रकृति वाला है वो तो लोक तो 10 में है, 9 में एक प्रकृति का स्थान है, किसी का क्रोध का होगा, किसी का मान का, किसी का माया का, किसी का लोभ का, संगलन, संगलन शब्द लगाना, यानी इसके ये 4 भंग हो जाएगी, स्थान एक और प्रकृति बदलने से अलग अलग उसी एक ही नंबर वाला क्रोध की, मान की, माया के और लोक की, दो चार ही पॉसिबिलिटीज है, तो उसको कहेंगे 4 भंग है। एक स्थान है कितने प्रकृति का, एक का, एक प्रकृति वाला एक स्थान है उसमें 4 भंग। अब 2 प्रकृतियों के भंग बताएंगे, दो प्रकृति ने एक कषाय वाला है, क्रोध मान मायलोभ, ये तो चार हो ही गए। और उसमें वेद कितने हो सकते हैं? तीन। उदय की बात चल रही, हमने देखा नौवे गुण स्थान तक तीनों ही वेदों का उदय होता है, तो चार गुना तीन 12 प्रकृति उनकी होगी वहां पर, यानी 12 भंग हो जाएगा। अब नीचे आते हैं तो उसमें दो युगल है, हास्य के साथ रति होगी, शोक के साथ रति ही होगी, यानी दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो ये 12 भंग 12 गुने 2 24 हो जाएगा। फिर 5 प्रकृति वाला, 5 प्रकृति में कौन सा एक बढ़ जाएगा? और हाँ भय जो सब बदल सकते हैं, तीन बार 24 अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें देखो, एक कैसा होगा? भय वाले 24 हो गए, जुगुप्सा वाले 24 हो गए, या दोनों ही नहीं लेना? नहीं, दोनों ही नहीं, एक कषाय नहीं ले सकते, दोनों ही नहीं लेते, समय प्रकृति को लेना सातवें गुण स्थान में। भय और जुगुप्सा भी नहीं है और समय प्रकृति है, 24 24 और 24, इतने भंग हो गए। वैसे और भी नीचे उनको ले सकते हैं, हाँ, और नीचे के गुणस्थानों में लेना, साइक वाला लेना, फिर तो उन्होंने ऐसे सभी का 96 कर दिया, 6 प्रकृतियों की बात, तो 6 प्रकृतियों की भी इसी तरह से हम गति कर सकते, तो उसके भी 168 उन्होंने बताए। यानी अभी हमने साइक समय दृष्टि संयत हुई है, फिर वेदक समय दृष्टि भय के बिना जुगुप्सा के साथ, ऐसे अलग अलग हमने घटित किए थे, उसके उदय के कुल भी बना के देखे थे। फिर 7 प्रकृतियों के कितने कितने होते हैं, ऐसे 24 24 भंग उनके भी 10 बार होते हैं, 8 प्रकृतियों के कितने होते हैं 50 पेज पर देखा था, तो 24 24 11 बार होते हैं, क्योंकि 8 प्रकृतियाँ अलग अलग गुण पहले गुणस्थान से लेकर चौथे तक होती है ना, 9 8 7 वगैरह वहाँ पर भी होती है, 5वें वाले को भी होगी, इस तरह से वो देखे थे 8 से। 9 वाले कितने हैं, तो 24 24 वाले 6 भंग होते हैं, वो भी घटित करना हर एक गुणस्थान में, पहले में भी होते हैं 9 वाले, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। 10 प्रकृतियों के कितने होते हैं, तो 10 प्रकृतियों का एक मिथ्या तो नहीं होगा, और वो भी भय और जुगुप्सा सहित वाला होगा, तो उसकी 24 ही भंग होगी। तो उन्होंने कितने होते हैं, 10 प्रकृति के कितने होते हैं, 1 24। फिर उन्होंने सूत्र बताया 52 पेज पर नीचे, 9 प्रकृति वाले 6 24 होते हैं, 8 के 11 24, 7 के 10 24, 6 के 7 24, 5 वाले के 4 24, 4 वाले के 1 24, 2 वाले के 12 भंग और 1 प्रकृति के 4 भंग, इस तरह से उन्होंने सभी भंगों की टोटल बताए। ये तो समुत्कीर्तना हुई, किसी स्थान प्रकृति स्थान की समुत्कीर्तना हुई, एक अधिकार हुआ उसका। फिर उसमें वो साधे अनादि ध्रुव अध्रुव बताए प्रकृति के स्थानों में, वो 10 वाला स्थान वो साधी है क्या अनादि है, ये सब। तो सभी पद कैसे है, तो साधी और अध्रुव है, क्योंकि भैजी गुस्सा होगी या नहीं भी होगी तो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता रहता है, तो कोई स्थान अनादि का नहीं है, तो शादी होगा ध्रुव ही होगा। फिर स्वामित्व बताने के लिए वे कौन से स्थान कहाँ होते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा ना, पहले गुण स्थान में क्या है, 10, 9, 8, 7, तो 7 से लेकर 10 वाले स्थान वो पहले गुण स्थान में होते हैं। तो 7 से लेकर 9 तक के 3 उदीर्ण स्थान मिश्र गुण स्थान में होते हैं, वे तो हमने शाखागण में भी देखे थे वहाँ पर। तो ये कहाँ कौन से गुण होते हैं वो उन्होंने बता दिए थे, वो भी हमने उदय के कूट की अपेक्षा से वो सब बातें देखी। आगे भी वही बात, दूसरी गाथा के अर्थ भी, 5 से लेकर 8 पर्यंत के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं, तो कहाँ किस अपेक्षा से बात करेंगे 5 वाले स्थान, उसकी भी बात वहाँ उन्होंने बता दी। तो ये स्वामित्व उन्होंने बता दिया उसमें। उसके बाद एक जीव की अपेक्षा काल बताते हैं 57 पेज पर। तो वहाँ नीचे से जो दूसरा सूत्र है उसमें बताया है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकृतियों के प्रवेशक का कितना काल है। तो कहते जगन्य काल एक काल, क्योंकि एक समय में वो तो उसकी भय जीवता का वो पलट सकता है, और अधिक से अधिक काल अंतर्मोक्ष। वैसे दो प्रकृतियों का, 4 प्रकृतियों का, वहां भी वो तो उक्षम श्रेणी से उतरते हुए लेना, और फिर मरकर देव में हो गया, तो उसका भी एक समय गठित होगा। सबका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया। अब 60 पेज पर एक जीव की अपेक्षा अंतर बता रहे हैं। 1, 2 और 4 प्रकृतियों के अंतर का कितना है, तो चढ़ के उतरे ही नहीं, उसे अंतर हो गया। अंतर घटित करना है ना, जगन्य अंतर तो एक समय एक अंतर मूर्त होगा, और उत्कृष्ट अंतर अर्ध कुजल करेगा। सभी है 5 का 6 का ऐसा ही लेना है, और उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल पर आता है अंतर लेना। आठ और नौ प्रकृतियों का अंतर पूछा उन्होंने, वो भी जवन्य अंतर एक समय, और 64 पृष्ठ पर उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि बताया। पहले जब वो संयम को ग्रहण किया तो 8 का नहीं रहा, फिर बाद में देव में उत्पन्न हुआ, और फिर भयजुगुप्सा एक उदीर्ण करने पर 8 प्रकृतियों के प्रवेश का अंतर हुआ, इस तरह से घटित किया। 10 प्रकृतियों का अंतर कैसे घटित किया है 65 पेज पर, अंतर मूर्त में वापस आए, वो तो जगन्य अंतर एक अंतर में, और उत्कृष्ट अंतर अब उसको समय दृष्टि बना 2, 4, 6, 7, क्योंकि 10 का स्थान मात्र मिथ्यात्व में ही है, 9, 8, 7 का तो ऊपर के गुण स्थानों में भी होता है, इसलिए यहाँ घटित होता है इतना काल 10 वाले सारी की व्यवस्था करता है। वही बात फिर उन्होंने आदेश में वगैरह बताई है। अलग अलग गतियों में भी बताई। आगे का जो अनुयोग है 69 पेज पर नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय लास्ट वो आगे बताते हैं। कि दस वाले नौ आठ सात छः पाँच और चार प्रकृति उनके तो उदीरक हमेशा होते ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दो और एक वाले वजन ही है, इसमें अंतर हो सकता है। हाँ, छः मास का होगा क्योंकि शपक शनि में भी होगी ना। अभी नारकियों में तो सभी स्थान हो गए, परंतु छह वाला उसमें अंतर पड़ सकता है क्योंकि औपशमिक समय तो मानना यह है नारकियों में भी। उसके बाद आगे वाला जो है भागा भाग वाला, तो आठ प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्या दो भाग है, दस और नौ के संख्या त्रय भाग प्रमाण है, सात छः पाँच चार दो एक प्रकृति के उदीरक अनंत भी भाग प्रमाण है क्योंकि वो तो संयमी के और ऊपर के गुणस्थानों के रहते हैं। उसके बाद बहत्तर पृष्ठ पर परिमाण अनुयोग बताया उन्होंने कि दस नौ आठ प्रकृतियों के उदीरक कितने तो अनंत है। सात वाला भी पहले मित्र ऋषि के होता है परंतु अनंतानुबंधी के किसी न क्वालिटी होता है, इसलिए वो भी कम है। सात छः पाँच प्रकृतियों के उदीरक कितने हैं तो असंख्या थे, चार दो और एक के कितने हैं तो संख्या थे। क्षेत्र में भी दस नौ आठ के तो पूरे लोक में हैं और बाकी वो लोक के संख्या असंख्या के बाद। पर्शन में भी ऐसे समझना है कि दस नौ आठ वाले तो पूरे लोक में स्पर्शन है, सात वाले असंख्यात भाग में और विहार की अपेक्षा तो कुछ कम आठ में और मानन्ति की अपेक्षा बारह भाग। उसके बाद उन्होंने आदेश में वही बात बताई है, उसके पश्चात नाना जीवों की अपेक्षा काल, क्षेत्र के बाद स्पर्शन बताया था, स्पर्शन के बाद नाना जीवन की अपेक्षा काल बताया। तो एक और दो प्रकृतियों का काल कितना है तो जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट कितना है काल तो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के बाद वो दो की एक होगी, एक का फिर नष्ट हो जाएगा और बाकी प्रकृतियों का सर्वदा काल। नाना जीवन की अपेक्षा 77 पुरुष पर देखते हैं, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर है तो एक और दो प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर छह में श्रेणी चढ़ने वालों की अपेक्षा और बाकी के जीवों का अंतरकाल नहीं है, हमेशा ही हो गए क्योंकि संयमी भी हमेशा हो गए, बाकी यानी जो श्रेणी वाले ही उसमें अंतर पड़ेगा, बाकी नीचे के जो गुणस्थान वाले हमेशा ही पाए जाएंगे। अभी इसमें स्थान में सन्निकर्ष होगा कि नहीं होगा, प्रकृति में सन्निकर्ष तो देखा, मिथ्या तो की उदीरना करने वाला अन्य कौन सी प्रकृति का उदीरक है वो तो कह सकते हैं, तो स्थान में भी सन्निकर्ष होगा कि नहीं होगा। जो दस दस प्रकृतियों की उदीरना कर रहा है क्या वही जीव उसी समय नौ का होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जो एक प्रकृति का उदीरक है वो दो का कैसे हो सकता है, ऐसे हर एक में लगाना। उसके बाद उन्होंने औदयिक भाव वो भाव अनियोग बताया, फिर अल्प बहुत्व में भी कि एक प्रकृति वाले सबसे कम है, उससे संख्यात गुना दो प्रकृति वाले हैं, उससे संख्यात गुना चार वाले हैं, उससे असंख्यात गुना पांच वाले हैं। क्योंकि वहाँ तो वो तो क्षाइक समय दृष्टि उपक्षण समय दृष्टि उसको ले लिया, उनकी संख्या असंख्या है ना, सीरियन से ही देखो पांचवें गुणस्थान वाले है ना, उसमें उत्तम समय दृष्टि लेना। औक्षणिक समय दृष्टि पांचवें गुणस्थान वाले सीरियन और क्षायिक मनुष्य पांचवें गुणस्थान वाले, उक्षम वाले भी लेना। वो संख्या बहुभाग हो जाते वहां पर, पांच सात छह सात में वो संख्या बहुभाग होते, तो पहले से वो असंख्यात गुने हो गए ना, क्योंकि पहले वाले तो श्रेणी वाले थे ये, और ये तो संख्या बढ़ गई, असंख्यात हो गई। छह प्रकृतियों के उससे भी असंख्यात गुने, सात प्रकृतियों के उनसे असंख्यात गुने, दस वाले उनसे अनंत गुने, नौ वाले फिर उससे ज्यादा है संख्या गुने, और आठ संख्या गुने, इन्हें आठ वाले मैक्सिमम है। भय और जुगुप्सा भी नहीं है, भय जुगुप्सा बिना वाले मिथ्या दृष्टि, और फिर उसमें वो सासाधन वाले भी हो गए, दूसरे तीसरे चौथे वो भी उसमें जुड़ जाएंगे। वही बात अभी उन्होंने नरक गति में अन्य अन्य गतियों में कितने होते उसके बाद अल्प भूतियों में बताई है। उसके बाद 83 पेज पर भुजगार का अधिकार चालू हो जाता है। स्थानों में भुजगार लगा रहे हैं, इन्हें पहले कम थे फिर अधिक हो गए, गुणस्थान उतना ही रहने पर आठ वाला होगा तो फिर नौ वाला दस वाला हो जाएगा, तो उसका भुजगार कहेगा। तो पहले कम थे बाद में ज्यादा हो गए तो भुजगार कहेंगे, कम हो जाएंगे तो अल्पतर कहेंगे, उतना का उतना रहेंगे तो अवस्थित कहेंगे। अब ये भुजगार के में उसमें भी 13 अनुयोग द्वार बताए। पहले में पहले समुत्कीर्तना बताते हैं तो कहते ओह की अपेक्षा भुजगार वाले भी है, अल्पतर वाले भी है, अवस्थित वाले भी है, अवक्तव्य वाले भी है, नहीं थे और हो गए। ये नहीं थे और हो गए वो तो मनुष्य त्रिक में ही हो सकता है, नारकी आदि में भुजगार अल्पतर अवस्थित हो गए। स्वामित्व में ये कौन से जीव है तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि भी हो सकते है, समय दृष्टि भी हो सकते है। भुजगार अल्पतर होने के लिए कुछ समय तो मिथ्या तो का कोई बात नहीं। अवक्तव्य वाले कौन हो गए तो उपशमना से गिरने वाले ही हो गए। अब एक जीव की अपेक्षा काल कितना होगा ये बात बताते हैं। तो भुजगार का जघन्य काल तो एक समय होगा, एक समय के लिए अधिक हो गया ना उसका, और उत्कृष्ट काल चार समय होता है। ये कैसे उन्होंने चार समय गठित किए हैं, ये पेज नंबर 86 पर है। यानी कोई उपशम समय दृष्टि प्रमत्त में है या संयता संयत में है, उपशम समय दृष्टि प्रमत्त वाला चार प्रकृति वाला था, संयता संयत था या असंयत समय दृष्टि था, असंयत छह प्रकृति वाला, संयत संयत पांच वाला, और संयत वाला वो चार वाला था। फिर जब उपशम समित्व का एक समय काल रहा तब सासाधन में आ गया तो भुजगार हुआ। फिर मिथ्यात्व में आते ही एक समय में मिथ्यात्व में आया और एक भुजगार हुआ। फिर भय शुरू हुआ तो उसका और एक हो गया, और फिर जुगुप्सा का प्रवेश हुआ तो उसका भी एक भुजगार हुआ। पहले उपशम समय दृष्टि था, सासाधन में आने पर एक भुजगार, मिथ्यात्व में जाने पर एक भुजगार, भय का शुरू हुआ तो भुजगार, और जुगुप्सा का शुरू हुआ तो भुजगार, ये चार भुजगार हो गए। अल्पतर का कितना काल है तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय बताया। यानी दस प्रकृतियों का उदीर्णा कर रहा था, भय की विच्छित होगी तो नौ की करने लगा, जुगुप्सा की हुई तो आठ की करने लगा, और समेतों को प्राप्त हुआ, तो अनंत मिथ्या तो अनंत अनुबंधी की विच्छित्ति हो गई। इस तरह से उसकी तीन समय होते हैं, अवस्थित का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक अंतर में। अवक्तव्य का कितना होगा? एक ही समय हो सकता है, जघन्य कहो उसको, उसको उत्कृष्ट कहो। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर देखेंगे हम। 89 पृष्ठ पर भुजगार में भुजगार की बात कर लेते, तो भुजगार अल्पतर और अवस्थित का अंतर कितना होता है? तो जघन्य अंतर एक समय है। मैंने एक समय के पश्चात फिर दोबारा भुजगार किया हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि उपशामक जीव जब पुरुष वेद की उदीरना शुरू हो गई तो उसका भुजगार हुआ। एक ही कर रहा था, एक का दो हो गया तो भुजगार हुआ, और फिर उसके बाद एक समय के लिए अवस्थित रहा। भुजगार का अंतर करना है, एक समय के लिए अवस्थित रहा और फिर मरकर देव में गया, फिर भुजगार हुआ, तो एक भुजगार का अंतर एक समय के लिए हुआ। अल्पतर के लिए भी ऐसे ही कहते हैं, मैंने भय और जुगुप्सा की उदीरणा कर रहा था, एक की उदय विच्छित्ति की, हाँ, और फिर वो गुणस्थान भी बदला उसका, तो उसका वो तो बदल जाएगा। अल्पतर का अंतर हुआ, समझ में? मान लेते नौ का करा, आठ का करा, फिर अवस्थित एक समय के लिए रहा, फिर गुणस्थान बदला तो और कम हो गया, तो अल्पतर का अंतर हो गया एक समय। उत्कृष्ट अंतर तो एक अंतर मोड़ते शब्द है। अभी वही उन्होंने अवक्तव्य का अंतरकाल जघन्य अंतर अंतर्मूर्त बताया था, अवक्तव्य का भी, और सबका उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परावर्तन बताया। अभी ये 93 पृष्ठ पर यही ओग से ये पूरी हो गई। आदेश में उन्होंने अलग अलग अंतर बताया, अब उन्होंने डायरेक्ट ये बताई बात 93 पेज पर ना नीचे कि अल्पबोध को छोड़कर बाकी जो है ना, तो कैसे कौन कैसे, तो नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय, भागा भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्श, काल अंतर और भाव, ये सब यहाँ बताते हैं। भुजगार में ये सब लगा रहे तो वहाँ कहेंगे तो उसके जीव नियम से है, अवक्तव्य पद में ही वो कदाचित है कदाचित नहीं है, या एक है या अधिक है। फिर उसके बाद भागा भाग बताया है 94 को कि भुजगार और अल्पतर के कितने हैं, तो असंख्यात वे भाग प्रमाण है, और अवस्थित वाले कितने, तो असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि अवस्थित तो लगातार रहते ना अंतर्मोत कर। इसके नीचे परिमाण बताया उन्होंने, भुजगार अल्पतर और अवस्थित के कितने जीव है तो अनंत है, और अवक्तव्य के कितने हैं तो संख्या है। क्षेत्र बताते हुए उन्होंने बताया कि भुजगार अल्पतर और अवस्थित के कितने कितना क्षेत्र व्याप्त है, तो पूरा लोक, और अल्पतर लोक का संख्या का। स्पर्शन में भी ऐसा ही समझना है। फिर उसके बाद 90 अवक्तव्य में अल्पतर में अवक्तव्य में, बाकी तीन जो है वो तो पूरा ही लोग काल में भुजगार अल्पतर और अवस्थित का काल हमेशा हुआ, नाना जी उनके पैसे। अब वक्तव्य वाला जगन्य नाना जीवन की अपेक्षा, जगन्य काल एक समय और लगातार किसी के होते हुए अन्य अन्य जीवन के होता रहेगा तो संख्यात समय है। वही बात उन्होंने आदेश में भी बताया, फिर अंतर बताते 98 पृष्ठ पर। अंतर की अपेक्षा भुजगार अल्पतर और अवस्थित का अंतर नहीं है, अवक्तव्य का अंतर होगा नाना जीवन की अपेक्षा। तो जगन्य अंतर एक समय होगा और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पुत्र होगा। अंतर तो उच्चम श्रेणी की अपेक्षा घटित होगा तो वर्ष पुत्र। भाव सर्वत्र उदय किया, अल्प बहुत्व में तो अवक्तव्य वाले सबसे कम है, भुजगार वाले अनंत गुणे हैं, अल्पतर वाले उनसे विशेष अधिक है और अवस्थित वाले उनसे असंख्यात गुण है। वही बात उन्होंने नारकियों में तो अवक्तव्य होगी नहीं, तो भुजगार वाले सबसे अल्प है, अल्पतर विशेष अधिक है और अवस्थित वाले असंख्यात हैं। ऐसी बात अन्यत्र भी घटित होगी, मनुष्य पर्याप्तों में वो संख्यात गुण की बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये भुजगार समाप्त होता है और यहाँ अभी पदनिक्षेप और वृद्धि शुरू हो जाएगी। ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन है, कल से हम ये पदनिक्षेप और वृद्धि शुरू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 15 था कि 14 था, उसने 15 लिखा और कल भी यहीं से शुरू करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूले का दो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे कहो
लक्ष्मी।